आज हमारे बीच में पधारे हैं योगियों के कोहिनूर और बाबा के नैनो किन्नौर आदरणीय सूरज भाई जी। ब्राह्मण परिवार में बड़ों से लेकर छोटों तक सबके दिलों में खास जगह बनाने वाले भाई जी का हम एक हाथ हिला के हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और अभिनंदन करते हैं। भाई जी का जीवन अपने नाम की गरिमा के अनुरूपी है। जिस प्रकार रोशनी देने वाले दिए को पहले खुद जलना पड़ता है, इस प्रकार योग यज्ञ में तपकर चारों ओर ज्ञान और समाधान का प्रकाश फैलाने वाले आप मास्टर ज्ञान सूर्य है। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के 5 वर्ष पहले ही 1964 में आप ज्ञान में आए और 1968 में आप मधुबन में आए और अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया, जिससे 1 साल तक ब्रह्मा बाबा की पालना लेने का आपको सौभाग्य मिला। फिर तो आज तक शिव बाबा के यज्ञ के तीनों कैंपस के भोलेनाथ के भंडारे आपकी देखरेख में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। टीवी शो समाधान द्वारा बहुतों को उनके जीवन की समस्याओं को पार करने के लिए आपने ज्ञान योग का बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सेवाओं के लिए आपको चाणक्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाबा के दिए समान और संकल्प से सिद्धि आपको प्रिय विषय है। सम्मान में रहने से सम्मान किस प्रकार स्वतः ही पीछे पीछे आता है, यह बात आप बहुत अच्छी तरह से समझाते और सिखाते हैं। इसलिए जहां पर भी आपके कदम पड़ते हैं, वहां सम्मान और संकल्प शक्ति के प्रयोग की आपकी प्रेरणाओं से अनेक आत्माओं के विघ्न दूर और कार्य सिद्ध होते हैं। आपके योग के प्रयोग यज्ञ में सदा से ही प्रख्यात है। आपके लिए मैं कहूंगी भाई जी, आप ब्रह्मा बाप की दाहिनी भुजा हो, आप ब्रह्मा बाप की दाहिनी भुजा हो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की धर्म ध्वजा हो। सारा देवीय कुल विश्वास करे जिस पर आप व दिव्य प्रज्ञा हो, आप व दिव्य प्रज्ञा हो। आप आशाओं का उजाला, समस्याओं का समाधान हो। आप भाई जी हर मर्ज का इलाज और हर दर्द की दवा हो, हर दर्द की दवा हो। ऐसे अनुभवी की खान आदरणीय राजयोगी सूरज भाई जी का आज हम पूरा लाभ लेंगे। आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि वर्तमान समय माया के रॉयल रूप क्या क्या है और हमें कैसे उन पर विजय प्राप्त करना है। आदरणीय सूरज भाई जी,
ओम शांति।
सभी दो हाथों से भाई जी का फिर से स्वागत करेंगे। नींद चली जाएगी।
माया पर जिन्होंने कल पहले विजय प्राप्त की हो, माया के रूपों पर विजय प्राप्त करना फिर से सहज हो गया कठिन? अगर हमें ये याद रहे, कल्प हमने माया को जीता है। कितनी बार जीता है? कितनी बार? कितनी बार बताओ, गिनती करो। उस अनंत बार में से 1000 हम ले लेते हैं आज, 1000 बहुत है ना। आपने किसी रास्ते को 1000 बार पार किया हो, आज अंधेरा है, कर लेंगे पार या लगेगा अंधेरे में कैसे जाएं? हमारे पैरों को भी रास्ता पता होता है, गाय भैंस को रास्ता पता होता है ना, सुनिए कहानी। बाबा के पास भी एक मरखनी गाय थी, मरखनी समझते हैं, मारने वाली। बाबा ने उसे बेच दिया, सिरोही पहुंच गई, उदास हो गई थी, मोह होता है जानवरों का भी। 2 दिन के बाद ही वापिस आ गई, मैं देखो कहां पहाड़ चढ़ना है, वापिस आ गई। बाबा ने समझ लिया इसका मन नहीं लगा है, बाबा उसके पास गए, तुम सबको मारती हो, सब डरते हैं तुमसे, इसलिए तुम्हें बेच दिया गया था, अब संकल्प करो आज से किसी को ना ही नहीं मारूंगी, तुम बहुत अच्छी हो। उस दिन से उसने किसी को मारा नहीं था। ब्रह्मा जी की आवाज, ब्रह्मा जी के वचन थे ना, मोस्ट इफेक्टिव। हम सभी ने माया को हजारों बार जीता है, मैं 1000 ले रहा हूं, तो माया को जीतने की शक्ति हमारे अंदर है। सुनो मुझे देखो भाई, जल्दी बैठो, आपको ही देख रहे लोग, माताएं अब किसी को नहीं देखेंगी। माया को जीतने की शक्ति, क्या कहा था, हमारे अंदर है। बोलो, माया को जीतने की शक्ति। भाई थोड़ा इधर को हो जाओ, ये लाइन इधर हो जाओ, माताएं और भी आएंगी जो सो गई होंगी ना, नाश्ता करके वो आएंगे भी, सब इधर हो जाओ थोड़ा, उनको भी कर दो भाई, तार छोड़ के बैठ जाओ, छोड़ दिया छोड़ दिया। माया को जीतने की शक्ति हम सबके पास है, बोलो। स्वीकार करो इस सत्य को। कहां से आई ये शक्तियां? जैसे ही हम बाबा के बनते हैं, बाबा हमारे सिर पर हाथ रख के अपनी सारी शक्तियां दे देते हैं। उन्हें पता है ये माया को नहीं जीत सकते, अच्छी तरह जानते हैं बाबा। सिर पे हाथ रख के सारी शक्तियां दे दी, शक्तियां हमारे अंदर हैं। करें 1 मिनट सभी अभ्यास, चाहे आंखें बंद करके करें या खोल के, फील करें वतन से बाबा का हाथ मेरे सिर पर आ गया नीचे। हाथों से अष्ट शक्तियों की 8 किरणें मुझ में समाने लगी। अब ये शक्तियां हम सबके पास हैं, स्वीकार कर लें, हैं? अब जो भगवान ने दी वो तो है ना, वो हमारे पास आकर सोई रहती हैं। उन्हें जगाना पहला काम, वो जगती हैं जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हैं। और अगर आपको वो सदा जगा के रखनी है तो कुछ दिन, 21 दिन, सवेरे उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा ने शक्तियां दी हुई हैं, इसका 7 बार अभ्यास कर लिया करें, विद गुड फीलिंग, है मेरे पास, ये नहीं रिपीट कर रहे केवल, मेरे पास सारी शक्तियां हैं, तो जागृत रहेंगी। कभी बाबा ने कही एक बात छोटी सी और बहुत बड़ी, कई माताएं कहती हैं बाबा हमें सहन शक्ति दो, पतियों से तंगी होती है, माताओं को सहन करना पड़ता है। बाबा ने उत्तर दिया, शक्तियां दो नहीं दे दी हैं, उन्हें यूज करो। तभी कहा था सवेरे उठकर याद किया करो मैं सहनशीलता की देवी हूं। जिसके पास जिस शक्ति की कमी हो, परखना नहीं होता, कोई भी धोखा दे जाता है, निर्णय ठीक से नहीं कर पाते, गड़बड़ होती है, सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है, 21 दिन कर जाओ, दूसरे 21 दिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास संपूर्ण परख शक्ति है। ये दो बहुत काम की हैं, बाकी भी काम की हैं, सामना करने की शक्ति। भिन्न भिन्न बातें जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत बुरी हाल हो रही है संसार की आजकल। लोग सोचते हैं विनाश तो होता नहीं, पर विनाश हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है संसार में, हमें उसका सामना करना होता है। ये संकल्प करेंगे, वही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास सामना करने की संपूर्ण शक्ति है, 7 बार, तो ये शक्तियां जागृत रहेंगे। जिसको जो चाहिए, बहुत बड़ी शक्ति होती है विस्तार को छोटा करने की, संकीर्ण बोलते हैं, यानी एकाग्रता की शक्ति, मन फैला हुआ है उसको समेटना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो हमारे पास शक्तियां हैं, अब हम एक लक्ष्य बनाए भट्टी में आकर, आज दूसरा दिन है, तीसरा एक लक्ष्य बना लें, मुझे अपने को ईश्वरीय शक्तियों से भरना है, स्पिरिचुअल पावर फुल ले लेनी है बाबा से, क्योंकि ये भरने का मौका अब के अलावा कभी नहीं मिलता। सर्व खजाने मुझे ले लेने हैं, मैं आपको चिंतन दे रहा हूं, आप क्लास के बाद सवेरे शाम कर लेना, संगम युग पर बाबा से मुझे क्या क्या लेना है। और इससे पहले यदि लिखें संगम युग पर बाबा से हमें क्या क्या मिल रहा है, वो बहुतों को पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, फिर उसमें से क्या क्या लेना है। जब वो लेना होता है मनुष्य को, उसके लिए वो प्लान करता है, मेहनत करता है, दुनिया में भी मुझे बाबा से ये लेना है, तो उसमें एक चीज है संगम युग पर मुझे स्वयं को संपूर्ण ईश्वरीय शक्तियों से भरना है, मुझे संपूर्ण भाग्य ले लेना है उससे, मुझे अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ ईश्वरीय बुद्धि, डिवाइन बुद्धि बना लेना है, ताकि जन्म जन्म मैं बुद्धिमान रहूं। जो कुछ यहां लेंगे वो जन्म जन्म साथ चलेगा, ऐसे सोचना। मुझे हर जन्म में धनवान बनना है, क्या करेंगे बोलो, ये तो जानते हैं सभी। मुझे हर जन्म में धनवान रहना है, किसी भी जन्म में धन की कमी ना पड़े, ज्ञान धन जितना ज्यादा होगा और देंगे उतना ही स्थूल धन जन्म जन्म साथ रहेगा। और यहाँ के लिए बाबा ने कहा, बहुत गुह्य राज है, एक ही बार आती हैं ऐसी बातें मुरलियों में, 4 तरह की शक्तियां एक बार इन पे बाबा की अव्यक्त मुरली चली थी। बाबा ने कहा जिसके पास ज्ञान धन बहुत है उसे ईश्वर उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सब जो कमाने वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज मुरली छोड़ के धन के पीछे भागेंगे, और अगर ज्ञान के पीछे भागेंगे तो धन आपके पीछे भागेगा। ये कोई रहस्य है इस सृष्टि के खेल के। जब मनुष्य धन के पीछे भागता रहता है और स्थिति को छोड़ देता है तो धन भागता जाता है, हम उसके पीछे भागते हैं। और जब मनुष्य प्रकृति का मालिक बन जाए, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो जाए, प्रकृति के मालिक का अर्थ है शरीर के मालिक, और इसका अर्थ है एक सेकंड में देह से न्यारे होने का अभ्यास, तो प्रकृति धन देने वाली है, धन पीछे पीछे आएगा। हमें धन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। ये आध्यात्मिक रहस्य है इस विश्व ड्रामा के। तो मुझे अपने को ईश्वरीय शक्तियों से भरना है, मुझे बाबा से संपूर्ण सुख लेना है। क्या विचार है? लेना है, क्या कहा मैंने? संपूर्ण सुख लेना है। पीछे वाले बोलो, क्या कहा? संपूर्ण सुख लेना है। ये सुख स्वर्ग के सुखों से भी बढ़कर है। बाबा ने कभी कहा संगम युग का एक मिनट का सुख एक पलड़े में रखो, और सतयुग त्रेता का सारा सुख दूसरे में, ये बड़ा होगा। पूरा संगम को अगर हम ईश्वरीय सुखों में बिताना सीख लें तो गजब की बात। इसलिए एक जो सूक्ष्म माया है, सवेरे उठने में माया है या नहीं? थोड़ा सा और सो लूं, अभी तो 4:05 है ना, 5 मिनट और सो लूं। बहुतों को आता है ये संकल्प, रात देर से सोए हैं, इधर आ जाओ कुछ बहने, रात आगे से आना, रात बहुत देर से सोए हैं, थके हुए, आज बाद में बाबा को याद कर लेंगे। बाबा ने तो कहा निरंतर मुझे याद करो, यही थोड़ा ही कहा सवेरे सवेरे ही करो बस, निरंतर मुझे याद करो। ये माया है या नहीं? माया है, इससे बाहर आना है। बहुत आ गए हैं बाबा के बच्चे जिनकी रोज आंख 3 बजे खुलती है और वो भी सोते नहीं। एक तो ऐसा मिला मुझे, कहा भाई जी मैं रोज 9 बजे सो जाता हूं और 1 बजे उठ जाता हूं, ये मेरी दिनचर्या हो गई है, ये मैं कभी नहीं मिस करता। भाई बहुत बुजुर्ग नहीं, 50 साल का होगा। मैंने कहा क्यों ऐसा कर रहे हो? बहुत अच्छा उत्तर था उसका, पैसा कमा लिया था क्या करना, अब मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। हमारी एक बहन थी गुजरात में, देखो उसकी कहानी सुनाऊं मैं आपको। मैं एक बार गया उनके सेंटर में, 5,000 तो माताएं हैं उनके पास, 5,000 भाई भी हैं, बहुत 200 भाई होंगे। कहा मैंने कोई अकाउंट नहीं रखा अपना, कोई बैंक अकाउंट नहीं, मास में जो कुछ मिलता है हर मास मधुबन जाती हूँ सब दे आती हूँ। मैंने कहा आपका पुरुषार्थ ज्ञान योग कैसा है बहन जी? मैं जल्दी सो जाता हूँ 8 बजे, शाम को खाना नहीं खाती और 12 बजे उठ के बैठती हूँ, फिर नहीं सोती। अभी पीछे उसने शरीर छोड़ा, बस 12 बजे उठी, योग में बैठी और गई। बड़ी अच्छी गति है ना। तो ऐसी आत्माएं भी हैं। इस सूक्ष्म माया पे विजय पानी है। नियम बना लो, उठना है तो उठना है, क्योंकि सवेरे के समय का महत्व ये है। ध्यान से सुन लेंगे, सारा दिन भी हम योग कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सारा दिन हमें बाबा से लेने की मेहनत करनी होगी और सवेरे बाबा अपनी ओर से हमें देता है, उसकी नजर हम पे रहती है सवेरे, दिन में नहीं। फिर जब दिन होगा कहीं और अमृत वेला है, उसकी नजर वहां चली जाती है। दिन में भी रहती है लेकिन उन पर जो बाबा के अति अनमोल रतन है, सब पे नहीं। इसलिए सवेरे उठने में जो सूक्ष्म माया आती है उसको यहां विदाई देकर जाएंगे। कौन कौन तैयार हैं? सवेरे बाबा सब कुछ देता है। एक और चीज मिलती है सवेरे हमें, बोलो क्या? बहुत बड़ी है वो, ब्लेसिंग और वरदान, जो दिन में नहीं मिलते। दृष्टि मिलती है और वरदान, और वो वरदान उनकी शक्तियां भी जन्म जन्म हमारे साथ रहेंगी। और वो वरदान बहुत बड़ी चीज है। आपने क्लासेस सुनी हो, मैं बहुत पहले से एक बात कहता था, अपने को कही बहुत, सबको कही, हम अपने काम बहुत आए, अपनों के काम आए। अपने तो धोखा भी दे रहे हैं आजकल, हम अपनों के काम आते हैं वो फिर हमारे कभी काम नहीं आते। मुझे तो उन माताओं पे बहुत दया आती है जिन्होंने कर्ज लेके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका भेजा, वो वहीं रह गया, शादी हो गई, फोन नंबर बदल दिया, नो कनेक्शन विद मदर, माँ से कोई कनेक्शन नहीं। अब बोलो क्या हाल होगा उस माँ का, माताएं बताओ। एक ही लड़का, कर्ज भी उतारना है, याद भी आती है, तो अपने तो साथ नहीं देते। हम अपने काम आए, अपनों के काम आए, अब हम संसार के काम आ जाएं, जो ये पुण्य का दृढ़ संकल्प अपने अंदर ले लें वो बहुत बुद्धिमान माने जाएंगे। तो ये वरदान हमें संसार को मदद करने में काम आएंगे। विनाश चालू है, चालू है या नहीं? अच्छी तरह चालू है, अब तो भूकंप भी बहुत होने लगे हैं। युद्ध, देशों के युद्ध तो चल ही रहे लेकिन युद्धों का डर बहुत बढ़ता जा रहा है, कहीं विश्व युद्ध न हो जाए, कहीं कोई देश गुस्से में आके एटम बम न छोड़ दे, क्योंकि एक का छोड़ना माना शुरुआत, लेकिन वो भी नहीं होगा, 30 तक नहीं होगा। हमारे पास मार्जिन है पुरुषार्थ की, तो सवेरे के समय को पूरा सफल करना है आज संकल्प कर लें सभी, बाद में सो जाएंगे। 2 घंटे 4 से 6 पूरा सफल करेंगे, अपने को अच्छे स्वमान में स्थित करेंगे, आत्मविमानी होने की प्रैक्टिस करेंगे, 5 स्वरूपों के अभ्यास करेंगे, बाबा से वरदान लेंगे, रूढ़िहान करेंगे, उसकी दृष्टि लेंगे। बाबा के बहुत अच्छे महावाक्य हैं, सब करेंगे रोज। बाबा ने कहा सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो, ये दृष्टि पवित्र आत्माओं की, ये छोटी चीज नहीं होती। जिनके पास 2 शक्तियां हों, देख लो आप में से किस किस के पास है, प्योरिटी की शक्ति और योग की शक्ति, शुभ भावनाओं की भी शक्ति हो, वो जब संसार को दृष्टि देंगे तो बहुतों को फायदा होगा, पूरे कल्प को वाइब्रेशंस देंगे बहुतों को फायदा होगा। सवेरे की सूक्ष्म माया को खत्म करना है। कईयों के पास माया है, रॉयल माया की बात है, 50, 60, 70 साल वाले भी संपूर्ण नहीं बने, हम तो 2-4 साल से हैं, हम क्या बनेंगे, छोड़ो इस चक्कर को, नई टेंशन दे दी बाबा ने आके, पुरुषार्थ करो, माया को जीतो, हमें तो टेंशन में नहीं रहना है, पहले ही अच्छे थे। एक माता आई, ज्ञान में चल रही थी, पति तो बेचारा दुखी रहता था, मुझे कहा हमारा खुशियों भरा पारिवारिक जीवन ज्ञान में आने से उदासी में भर गया है, मैं छोड़ती हूं ज्ञान को। छोड़ दिया। अब देखो दो दुविधा की बात, पवित्रता के कारण उसका पति उदास रहने लगा है, उदास के कारण घर का माहौल थोड़ा भारी रहता है, अब इसको भगवान अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, अगर ये चाहे तो उस वातावरण में फिर से खुशियां भर सकती थी, पर विकारों की खींची से भी थी, चली गई। कईयों का ऐसा हाल है। तो हमें तो विजय माला में आना नहीं है, हम थोड़ा ही विजय रतन बनेंगे, अभी तो आए ज्ञान में, ढीले हो जाते हैं। बाबा ने विजय माला के लिए एक बहुत गुह्य बात कही है, आप में से कोई विजय माला का उम्मीदवार हो सोच लेना, बस सोच लेना ना, हाथ तो सभी उठा देंगे, हाथ नहीं उठाना, सोचना है। बाबा ने कहा विजय माला की आखिरी दो तीन सीटें अंत तक भी खाली रखी जाती हैं, ताकि कोई भी पीछे आने वाला तेज पुरुषार्थ करके बैठना चाहे तो कुर्सी खाली है। लेकिन विजय माला हाथ उठाने से नहीं आती, विजय रतन के लिए 8 घंटा योग, बैठकर नहीं, कई बैठ जाते हैं 8 घंटा, फिर कमर जवाब दे जाती है, फिर हॉस्पिटल में बैठना पड़ता है, बैठ के नहीं, कर्म योगी जीवन बना दें। संपूर्ण प्योरिटी चाहिए विजय माला में आने के लिए, संतुष्टता चाहिए, निरंकारिता चाहिए। तो ये संकल्प न करें कि हम तो विजय माला में नहीं आ सकते, विजय माला के बाद 1008 आत्माएं और बहुत पावरफुल हैं, 1008 उनमें आया जा सकता है। 16108 पावरफुल नहीं होते, 16108 वो होते हैं जो त्रेता के अंत तक प्रिंस प्रिंसेज बनते हैं, उनमें तो हल्के आत्माएं भी होती हैं जिन्होंने समर्पित कर दिया कुछ सेवाएं की, प्योरिटी अपनाई, वो उसमें आ जाएंगे। लेकिन 1008 तक की आत्माएं बहुत पावरफुल होती हैं, और विजयमाला में पहली 25 आत्माएं बहुत मूल्यवान होती हैं संसार के लिए। जहां ये विजयी रतन होंगे इस संसार में, एक जगह नहीं है, अलग अलग, भारत में ज्यादा, विदेशों में थोड़े से, वहां इनकी उपस्थिति अनेकों को सुरक्षा प्रदान करेगी, ये बन जाएंगे मास्टर विश्व रक्षक। तो ऐसा ढीला संकल्प कभी नहीं करना है। और सूक्ष्म माया होती है, सूक्ष्म रॉयल माया में बड़ी माया है, मेरा नाम हो। मुझे बहुत मान मिले ज्ञान में, ज्ञान में मैंने ये काम किया, मैंपन के सारे स्वरूप, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, सूक्ष्म रहता है, मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूं बाबा की, एक अच्छा संकल्प, लेकिन मैं कर रहा हूं इससे रॉयल माया, मैं मेरा नाम मान श्यान की इच्छा, जो इनसे मुक्त हो जाए, जो इनसे मुक्त हो जाए उसका जीवन अलौकिक शक्तियों से भर जाएगा। मान अगर रह जाए, मान की इच्छा, बाबा की मुरलियों में आपने सुना है, लेकिन सबको तो याद नहीं रहता ना, सब सुनते, कई बच्चे सोचते हैं हमारा खजानों का खाता, भाग्य का खाता बहुत ज्यादा है, लेकिन बाबा ने जब खाते चेक किए तो बाबा ने कहा उतना नहीं है जितना तुम समझते हो, और बहुत अच्छा राज बता दिया। जो निमित्त और निर्माण भाव से सेवा नहीं करते, मैं अपन से करते हैं, उनका केवल 5% ही जमा होता है। 5% समझिए ना, जीरो, कुछ नहीं। तो हमें संगम युग पर ये समझ लेना है कि ये सारा खेल, अब तो दुनिया का ही खेल, अब से पहले नहीं, अब दुनिया का सारा खेल, इसका कंट्रोल शिव बाबा ने अपने हाथ में ले लिया है। सूक्ष्म रहस्य है दुनिया में जो महाविनाश भी होगा, और अब जो स्थापना के कार्य में बहुत बड़ी जय जयकार का पाठ चलेगा, वो सब बाबा ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अभी अब नीचे वाले नहीं कुछ कर सकेंगे, वो होगा जो बाबा चाहेगा। जय जयकार। कितनी आत्माओं को ब्राह्मण बनना है, बोलो ना, आप जानते हैं सब। बाबा कहते हैं जितने देवी देवता थे सब ब्राह्मण बनेंगे। अब देखो 33 करोड़ की बात तो है, तब 33 करोड़ की संख्या केवल भारत की नहीं होगी, भारत का विस्तार दूर दूर तक फैल जाएगा। जो दुनिया के नक्शे को जानते हैं, इधर सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा सब, इधर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्री, इधर चीन, जापान, ये सब भारत के हिस्से, चीन, जापान नहीं, चीन और रशिया, ये सब भारत के हिस्से होंगे। थोड़ी जगह में देवता बसेंगे, दूर दूर बसेंगे, वो 33 करोड़ में आएंगे। पीछे सबके राज्य अपने अपने हो जाएंगे जब द्वापर होगा। इनमें से 2 करोड़ सतयुग की आबादी, पता है ना, सतयुग अंत तक 2 करोड़, 9-10 लाख से 2 करोड़, वो तो बहुत अच्छे ब्राह्मण होंगे। उनमें से जो 108 हैं वो विश्व पर राज करेंगे जन्म जन्म, केवल 8 नहीं, 108। आप चिंतन देता हूं, सतयुग में एक राजा कितना समय राज करेगा, बोलो, 150 वर्ष। आयु कितनी होगी, तो जन्म लेते ही बैठ जाएगा। फिर सोचो सतयुग में एक राजा कितना वर्ष राज करेगा, फिर सोचो 120 से 125, 115, चलो सोच लेना। 8 गद्दी चलेंगी, ये तो बाबा कहता है अश्वरत्नों के लिए। और भारत में एक होगा, जैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट होती ना, केंद्रीय प्राइम मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री, फिर चारों 37 स्टेट हैं भारत में, 29-30 उनके अलग अलग मुख्यमंत्री यानी राजा। सतयुग में 4 और 8 होंगे, 4 और भी होंगे, एक बीच में, 7 चारों ओर, समझो 1-1 लाख पर 1-1 राजा हो जाएगा लगभग। तो 108 सतयुग में राज करेंगे, पूरे सतयुग पर, अश्वरत्नों के कारण 8 गद्दियों का गायन है। इसका अर्थ ये नहीं 150 साल राज करेंगे, 150 साल कैसे राज होगा, जन्म लेते ही थोड़ा ही राज पर बैठेंगे और मृत्यु तक। अंत से कुछ साल पहले माँ बाप अपने बच्चों को राज तिलक देकर खुद वानप्रस्थ होंगे, और सतयुग में शादियां होंगी 50 साल में, 60 साल में पहला बच्चा, 70 में दूसरा। आप लोगों ने नहीं सुना हो शायद, आज सुना देता हूं। तो 50 साल के बाद ही कोई गद्दी पर बैठेगा, और थोड़ा पहले छोड़ देंगे तो लगभग आयु का आधा समय ही कोई राज करता है, 75-80 साल। इससे बहुत राजाई हो जाएंगी। तो 108 राज करेंगे पूरे सत्युग पर, और 16,108 हो जाएंगे त्रेतान तक, जो दूर दूर फैला होगा। जैसे आजकल एक गांव में सरपंच या प्रधान होते हैं ना, ऐसे वहां एक एक गांव का भी राजा हो जाएगा। जिन्होंने भी यहां समर्पित किया, पता नहीं आपने सुना या नहीं ये राज, जिन्होंने भी यहां समर्पित किया, बाबा कम से कम एक बार उन पर राजाई समर्पित अवश्य करेंगे, चाहे वो छोटी हो। बाबा जब साकार में थे लास्ट ईयर में, किसी बड़े महारथी ने पूछा था, अब उसे जानते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि बाबा अगर मैं अब शरीर छोड़ दूं तो मुझे मेरा पद क्या होगा। बाबा कहते थे ना मुरली में। बाबा ने उसे देखकर कहा, बच्चे त्रेता के अंत में कोई छोटी मोटी राजाई मिल सकती है। वो तो सोचता ही रह गया, मैं इतना बड़ा महारथी, मेरा इतना नाम। तो इसमें नाम की बात नहीं, लंबे समय से ज्ञान में चलने की बात भी नहीं, इसमें बात है सोच लो कौन कितना योग्युक्त हुए, किसकी प्योरिटी कहां तक पहुंची। प्योरिटी की डेफिनेशन जो मुरली सुनते हैं, बाबा ने बहुत सुना दी है, ईर्ष्या द्वेष भी है, पर चिंतन है इम्प्योरिटी, प्योरिटी की शक्ति डाउन हो रही है, आलस अलबेलापन भी है इम्प्योरिटी, व्यर्थ संकल्प इम्प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी की परिभाषा सुन लो एक बार, आइए अव्यक्त मुरली में। संपूर्ण पवित्र आत्मा अर्थात केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त ही नहीं, साधारण संकल्पों से भी मुक्त, स्वमान में रहने वाली आत्मा ही संपूर्ण पवित्र मानी जाएगी। अगर साधारण संकल्प भी छूते, मान लो किसी का ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा है, उन्हें संपूर्ण रूप से पालन किया हुआ है, लेकिन कामकाज के साधारण संकल्प, तेरे मेरे के साधारण संकल्प चलते ही रहते हैं, प्योरिटी की शक्ति नष्ट होती रहती है। देखो मनुष्य के मन में एक मिनट में लगभग 25 संकल्प उठते हैं, अगर आप योग बहुत अच्छा करें। आजकल ये स्पीड बढ़ गई है, 30-40 तक पहुंच गई है बहुतों की। इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, सोच ही रहे लोग, क्या सोच रहे उन्हें पता नहीं। इस स्पीड को हम कम कर दें, वो होगा अशरीरीपन और स्वमान से, ज्ञान के शेष चिंतन से, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। अगर कोई अपने मन की स्पीड को 8-10 विचार प्रति मिनट पर ले आए तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। देवता जब हम थे सतयुग में तो हमारी मन की स्पीड 8-10 संकल्प प्रति मिनट थी, वहां हम पहुंच जाएंगे सतोप्रधान स्थिति। दो ही तरीके इसके, अशरीरीपन बहुत ज्यादा सारे दिन में, और स्वमान, क्योंकि स्वमान का एक संकल्प अनेक व्यर्थ के संकल्पों को समाप्त कर देता है। सूक्ष्म माया, रॉयल माया, बोलो और क्या, आप सुनाओ, जानते हैं आप सभी, जानते हैं आप लोग, गृहस्थ में रहते हैं, शादियों में फंक्शंस में अपने रिलेटिव के पास जाते हैं, सोचते हैं एक दिन खाने में क्या कोई मुश्किलात होती है, थोड़ा ही हमारी धारणाएं हम तोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ले लिया कोई बात नहीं, गुलाब रसगुल्ले बहुत टेस्टी दिखाई दे रहे हैं, रसमलाई तो आकर्षक है, या कोई नहीं देख रहा, इधर उधर देखा या कोई नहीं है, थोड़ा सा खा लेते हैं। माताएं करती होंगी जरूर, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, नहीं करती। अच्छा, बहुत अच्छा जो नहीं करते, पर भाई तो कर लेते हैं, क्योंकि रिश्तेदारियों में जाना पड़ता है। अपनी बहन के पास ही गए, बहुत मुश्किल होती है, वो कहे कुछ तो खा लो, नहीं तो नाराजगी होती है। इसके अलग उत्तर हैं, उस पर हम नहीं आ रहे हैं। तो मान की इच्छा, कई लोग सेवा नाम और मान के लिए करते हैं, और संगम युग को ये वरदान है, जो जिसको चाहिए वो मिलेगा, खूब नाम और मान होगा उनका, लेकिन भविष्य पद ढीला पड़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे हमने देखे, भाई भी और बहनें भी, सेंटर का मकान बन रहा है, बहुत ज्यादा मदद करते हैं, लेकिन बहन जी को कहते हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, गुप्त, मुझे भी नहीं पता ऐसा मैं दूंगा, मुझे संकल्प भी नहीं कि मैंने कुछ किया, ये मानता है। इच्छा मान की ये सबसे बड़ी कमजोरी है किसी की संगम योग पर। बाबा ने बहुत अच्छी बात साकार में एक दिन रात्रि क्लास में कही, मुझे सदा याद रही, बहुत काम आई। बच्चे, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है। नाम के लिए कहा, तुम्हारे जितना नाम चारों युगों में किसी का नहीं है, अभी शिक्षा से मुक्त हो जाओ। जिनको नाम की इच्छा नहीं, हम देख रहे संगम पे, जिनको नाम की इच्छा नहीं उनका ही नाम ज्यादा हो रहा है। जमान के पीछे नहीं भागते, मान उनके पीछे भाग रहा है। मान हम मांगेंगे नहीं, बल्कि बोलो, ठीक उत्तर दे रहे, अधिकार से प्राप्त करेंगे। हमारे कार्य, हमारी स्थिति इतनी सुंदर हो कि लोग हमें न चाहते भी मान दें। हमारी बहनें कहीं भी राखी बांधने जाती है, बहनों को सब पता, लोग खड़े हो जाते हैं ना, कोई पैर छूने लगता है, कितना भी विरोध करें फिर भी जानते हैं ये महान हैं, पवित्र आत्माएं हैं। मान और नाम, इसके पीछे नहीं भागना, संकल्प ही रखना है, नाम हो तो केवल बाबा का, उससे ही सब जुट जाए, उसका ही नाम सबके मुख पर और मन पर आ जाए, हमारा आप ही आ जाएगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं। स्वमान में रहेंगे, मान पीछे पीछे भागेगा। बाबा ने बहुत गहरी बात कही है कभी। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं लंबा समय, एक दिन आएगा संसार उनके चरणों में झुकेगा, संसार मान देगा। हम अपने श्रेष्ठ स्वरूप को लेते चलें। बहनों को मैं कहता हूं, भाई लोग समझ जाएंगे, आप इस स्वरूप को बढ़ाते चलो, मैं इष्ट देवी हूं, मैं अष्टभुजाधारी हूं। देखो क्या होता है, वो आप खुद देखना क्या होता है, आपके परिवार सम्मान देंगे आपको। जिन भाई बहनों को ये कठिनाई होती है कि हम ज्ञान में चल गए, विरोध बहुत हो रहा है, होता है, हमारे अपने हमारी गिलानी करने लगे, स्वमान को बढ़ाओ, सारा संसार सम्मान देगा। अब भगवान ने कह दिया, उसको कोई टाल नहीं सकेगा। स्वमान की कुछ बातें ले लो, स्वमान के अभ्यास से सूक्ष्म लाभ क्या होता है, हम ये जानते जाएंगे मैं कौन हूं, आत्माओं के वाली है नहीं, मैं कौन हूं। और इससे क्या फायदा होगा, मेरी सूक्ष्म कमजोरियां क्या हैं वो पकड़ में आती जाएंगी। मान लो किसी को फीलिंग आती है, बहुत बहनें कहती सुनी जाती हैं, ये मुझे ऐसा बोलते हैं तो फीलिंग तो आएगी ना। अब उनकी बात भी ठीक लगती है, लेकिन बोलने वाले बोलते रहें और हम माताओं से बुलवाना चाहता हूं, हम स्वमान को बढ़ाते चले। इसी हॉल की एक घटना याद आ गई मुझे, तब ये स्टेज भी नहीं होती थी। अव्यक्त बाबा को बुलाया गया मधुबन वालों के लिए, भाई मिले, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बाबा दृष्टि दे रहे थे, सबको एक दो बात कहते थे, टोली देते थे। नंबर आया बहनों का, एक बहन आई, उसने न बाबा की दृष्टि की इंतजार की न बाबा कुछ कहे इसकी इंतजार की, कहा बाबा मुझे सब बहुत बोलते हैं, बीमार रहती है नहीं, बहाना कर रही है, फ्रूट खाने की इच्छा होती है ये बीमारी का बहाना कर रही है, बहुत बोलते हैं लोग। बाद में बाबा ने उसे दृष्टि दी, हम सोचने लगे बाबा क्या कहता है भाई इसको, हम उसे जानते थे, हमारे बीच में रहती थी। बाबा ने कहा उसको तो काम नहीं आई, हमें बहुत काम आई वो बात। उनका काम है कहना और तुम्हारा काम है अपनी खुशी न छोड़ना। दूसरी बात कही, मुझे तब से याद है ये बात, शायद 50 साल के आसपास की होगी, 50 साल पहले। बोलने वाले जब बोलना नहीं छोड़ते, तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ते हो। बहुत सुंदर बात है, हम इन चीजों को अपना लें। संगठन में जब हम रहते हैं बातें होंगी या नहीं होंगी, परिवारों में भी होती हैं, दो के बीच भी होती हैं, पति पत्नी के बीच भी होती हैं, संघर्ष चलते हैं आजकल, बहुत कड़वाहट भरती जा रही संबंधों में, ईगो मनुष्य का आसमान छू रहा है, ईगो और एंगर, क्रोध और अभिमान सबसे ज्यादा आजकल कष्टदायी है परिवारों में, संबंध बिगड़ रहे हैं। बता दो एक कहानी, लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी, लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा, शादी हो गई, दोनों की तनख्वाह बहुत अच्छी, ज्यादा ज्यादा, कौन किसके आगे झुके, तुम भी रानी मैं भी रानी, टकराव का एक बड़ा कारण। उसमें से एक समझदार हो तो गृहस्थ चलता है, न हो तो डिवोर्स हो रहे हैं। छोटी गलती कर रही हैं बहनें, छोटी बहनें, जिसके कारण उनके घर टूट रहे हैं। बहुत कम सोचती हैं कि घर नहीं तोड़ना है, लेकिन वो जो ईगो है तोड़ देती है। हम तो अपने घर चले जाएंगे ना, हमारा घर बहुत साहूकार है, लेकिन उसे नहीं पता घर में हाल क्या होगा, तुम्हारा पता है क्या हाल होगा घर जाके। तो क्रोध और अभिमान इसको छोड़ना है हमें। यहां संकल्प करेंगे सभी, इनके वश मुझे नहीं होना है। मैंपन पे बहुत ध्यान देंगे, आपके अंदर शक्तियां बढ़ती ही जाएंगी। मेरा ही नाम हो, ठीक है मेरा नाम हो, लेकिन कई लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, केवल मेरा ही नाम हो, दूसरे का नहीं। इसलिए कई लोग योग्य भी आते हैं उनके पास, उन्हें वो आगे नहीं बढ़ने देते, सेंटर ढीला रह जाता है, बहने घर छोड़ के वापिस जाती है। पढ़ने ही नहीं देते, केवल मैं चमकू संसार में, बाकी सब धुंधले हो जाएं। गलत धारणा है अच्छी। जो व्यक्ति दूसरों को योग्य बनाए, जो दूसरों को भी आगे बढ़ाए, वो खुद बहुत आगे बढ़ता है। बाबा ने बहुत बार सिखाया है, जो दूसरों की टांग खींचे उसकी टांग खींचने वाले कई मिल जाएंगे, जो दूसरों के द्वार बंद करे उसके द्वार तो पहले ही बंद हो जाते हैं। हिंदी में किसी कवि ने एक बहुत अच्छी बात कही, खाई खने जो और को ताको कूप तैयार। जो दूसरों के लिए खाई खोदता है, पीछे कुआं उसके लिए तैयार रहता है। इसलिए जो सबको साथ लेकर चले, जो सबको सहयोग देना सीखे, जो योग्य व्यक्ति को आगे करे, वो आगे निकल जाता है। हमने तो बाबा से यही सीखा भाई। इसलिए देखो किचन बहुत बड़ा बड़ा चलता है, आप जानते हैं। हमने तो सोचा अब हम कहाँ इसमें लगे रहेंगे। मेरी आदत ही थी एक चीज छोड़ो दूसरी आगे लो, उसको भी छोड़ो और तीसरी आगे लो। हमने देखा कई लोग पढ़े लिखे योग्य हमारे पास आने लगे, उनको सिखाया, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी, संभालो। गलती करेंगे वो, गलतियों को समाना, गलतियों वालों को सिखाना, हमें फ्री कर दिया। मैं बहुत फ्री हूँ, मेरे से ज्यादा फ्री कोई नहीं। किचन में बस जाता हूँ और कुछ नहीं, केवल जाता हूँ। और नीचे तो ये है 10-12 हजार तक तो मैं जाता भी नहीं, मुझे पता काम फर्स्ट क्लास चलेगा, चलता है। अब माताओं की भट्टी थी, 17 हजार का भोजन बहुत बन रहा था, मैं एक बार गया बस, फर्स्ट क्लास चला। योग्य व्यक्तियों की हमने दादी से सीखा था, योग्य व्यक्तियों की योग्यता को सम्मान देना, दादी प्रकाशमणि। हम बहुत छोटे थे, हमारी योग्यताओं को उन्होंने सम्मान दिया। कभी कभी तो मुझे कह देती थी अलग से, तुम तो दादी से भी अच्छी क्लास कराते हो। मैं कहा नहीं दादी, आपने तो सिखाया है, ये हम जानते थे, हमें उमंग दिलाने का तरीका है उनका। तो योग्य जो है उसकी योग्यताओं को निखारें आप, फायदा हो। कई बहनें मैं सेंटरों में देखी, इंचार्ज हैं, पढ़ी लिखी कम है, पढ़ी लिखी बहनें आई हैं, उनको सौंपा, उनको योग्य बनाया, उनको अधिकार दिए, खुद मौज करती हैं। नाम उसका किसका सेंटर है भाई, फलानी बहन का है, वो कुछ नहीं करती, करने वाले 10 हैं उसके पास। ये कला है ना, ये कला परिवारों में भी सबको सीखनी है। अगर पति सोचे पत्नी मेरी आज्ञा के बिना कुछ न करे तो क्या होगा, वो छुपके करेगी। मनुष्य को सदा दबाया नहीं जा सकता। पत्नी सोचे पति मेरे अधिकार में चले, होगा, सदा नहीं होगा। एक दूसरे को थोड़ा फ्री करें, बंधन किसी को भी स्वीकार नहीं होता। नहीं तो मनुष्य की साइकोलॉजी यही है कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है ना, मनुष्य भी अपने रास्ते बना लेता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े कुमार, बहुत निरहंकारी, मैंने उसे पूछा कितना कमाते हो मास में, 10-11 लाख। मैंने कहा गरीबों पे दया भी करते हो, कहा कर देते हैं। कहा देखो सेंटर में सेवा करने की स्थिति यह है, जो भी चेक आएगा सीधा पापा के खाते में जाता है। मैंने कहा फिर तुम्हारा, मैंने अपना रास्ता निकाल लिया। बहुत रास्ते हैं ना, किसी को कह देगा चेक नहीं देना, कैश देना, वो तो अपने हाथ में है ना, डॉक्टर तो वो है ना, बड़ा डॉक्टर है, नामी ग्रामी है, बहुत निरहंकारी। उसकी ड्यूटी हमें चाय पानी देने में लगाई थी। तो मैं क्या करता हूं आजकल, कुछ दिनों से जो हमारी सेवा में दिए जाते हैं भाई, उनका परिचय पूछ लेता हूं। एक जगह गए हम गुजरात में, एक लंबा सा कुमार हमारी सेवा में दे दिया गया। रुपेश भाई हमारे साथ था, उसे कह रहा भाई मेरे बनियान में दाग लग गया, जरा अच्छी तरह रगड़ के इसको साफ कर देना। मुझे ख्याल है मैं इसका पूछ तो लूं परिचय क्या है। मैंने पूछा, सुनो भाई बैठो, आपका परिचय, आपकी क्वालिफिकेशन, क्या करते हो? कहा मैं, अरे क्या करोगे भाई जी पूछ के। मैंने कहा बता तो दो, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जन हूं। मैंने कहा रहने दो, हम अपनी चाय पानी खुद कर लेंगे। ये व्यक्ति भी ऐसा ही कुमार हमारी सेवा में दे दिया गया। आधा दिन तो हमने उससे सेवा ली, फिर मुझे आदत है, मैंने कहा भाई परिचय अपना करा दो, क्या करते हो? कहा मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैंने कहा फिर आप हमारी सेवा में आ गए? मैंने कहा रहने दो, हम आप ही कर लेंगे। कहा नहीं, मैं तो किचन में पोछा लगा के आ रहा हूं, मेरी ड्यूटी किचन में है, आप आके देखो मैं खाना बना रहा हूं। कितनी महान है ये आत्माएं। फिर हमने उसे चाय पानी तो नहीं मंगाई। जो व्यक्ति 11 लाख हर मास कमा रहा है, बहुत निरहंकारी है, परिवार बहुत अच्छा है उनका, लेकिन वो लगा हुआ सेवाओं में, हम देखा वो पोछा लगा रहा था। ऐसी आत्माओं से हम कैसे सेवा लेंगे, वो तो वैसे ही महान है। डॉक्टर छोड़ो, पर बहुत महान आत्मा है, हमें तो बहुत मिलते हैं ऐसे, कहते हम सेवा करेंगे, गाड़ियों में तो ले जाते हैं। मैंने कहा चलो वो तो ठीक है, पर चाय पानी की सेवा छोड़ दो, हम आप ही कर लेते हैं। महान वही है जिसने अभिमान को जीत लिया। इसलिए जितनी भी सूक्ष्म तरह की माया, व्यर्थ के संकल्प, देखा बहन जी ने इसे पूछ लिया मुझे नहीं पूछा, देखा इसे स्टेज पे बुला लिया मुझे नहीं बुलाया। कई जगह बहनों ने दीपक जलाते हैं ना प्रोग्राम से पहले, हम कहते हैं बहन जी कुछ भाई बहनों को बुला लो जो आपके अच्छे हों। कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्यों? अरे बहुतों को फीलिंग आती है इन्हें बुला लिया हमें नहीं बुलाया, देखा ये पैसे वाले इन्हें बुला लिया हमें गरीबों को नहीं बुलाया, इसलिए बस हम ही कर लेंगे चार पांच, बाकी सबको खड़ा कर देते हैं, तुम वहीं से अपनी जला दो लाइट, कौन सी, मोबाइल की। तो जो इन चीजों से परे हो गए वो सचमुच बाबा की नजरों में आ जाते हैं, फिर उनकी ही नजर में बाबा रहते हैं। टाइम हो गया, मैंने तो घड़ी अभी देखी ध्यान से, इसलिए क्लास यहीं समाप्त कर देते हैं। अपने लक्ष्य को महान बनाना और ये संकल्प पक्का कर दो, ये समय है स्वयं भाग्य विधाता से सब कुछ लेने का, बाकी जन्मों में तो मांगते ही रहेंगे ना उससे, अब वो देने आ गया है और हम अधिकार से प्राप्त करेंगे। ओम शांति।
भाई जी एक प्रश्न लास्ट में पूछना है कि आप तो यज्ञ में जल्दी आए हो, तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो इस हॉल में मम्मा को रखा था?
नहीं, ये हॉल नहीं था तब, छोटा हिस्ट्री हॉल।
अच्छा हिस्ट्री हॉल,
ये हॉल 74 में बना।
अच्छा
बस चले
जी। तो भाई जी को सभी एक हाथ की के दो हाथ की, दो हाथ सूक्ष्म माया पर विजय कैसे पानी है। तो पहला तो भाई जी ने अमृत वेला बताया, और अमृत वेला क्या करना है, वरदान और समानों से अपने आप को भरपूर करना है, और फिर बाप से दृष्टि लेके पूरे संसार को देनी है, फिर योग की शक्ति से पूरे कल्प को वाइब्रेशन देना है, फिर नाम और शान ये भी क्या है, एक सूक्ष्म माया है, वो भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया, और व्यर्थ संकल्प और साधारण संकल्प ये भी क्या है, अपवित्रता है ना। और समान में रहने से मान पीछे पीछे आएगा, स्वतः आ जाएगा। और मास्टर सर्वशक्तिवान में नशे में रहेगा, उसके पीछे संसार दौड़ेगा। और दूसरा, एक भाई जी ने माता की बात बताई बाप दादा के साथ की, तो बाबा ने क्या बताया, कुछ भी हो जाए अपनी खुशी नहीं जानी चाहिए, और जो क्रोध और अभिमान छोड़ेंगे तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और वही महान बन जाते हैं। और जो क्रोध और अभिमान को छोड़ता है, महान बनता है, तो बाबा के दिल पर, बाबा की नजरों में वो रहता है और इसकी नजरों में बाबा रहता है। तो बहुत बहुत अच्छी तरह से भाई जी ने श्रृंगार किया, साथ में सत्युग की कहीं रहस्य भी भाई जी ने बताया, जो कहीं बातें हमें नहीं पता होती। हम सत्युग की व्यवस्था को देखते, सत्युग को याद करना माना उसकी व्यवस्था को देखना, लेकिन काफी बातें जब क्लियर होती है तो पांच स्वरूप की एक्सरसाइज में बहुत इजी रहता है। तो भाई जी फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओम शांति।
खुशियाँ मिली।